ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करें और पुण्य क्रियाओं का आचरण करें। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं, इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार के सुगंध, अगर चंदन, चोये आदि और अप्सरा अनिच्छित प्राप्त हो तो उसका निरादर करता है, और जो स्त्री को देखता है तो माता के समान जानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे के समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही औरों को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुरुष पुण्य कर्म करता है, सत शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। असंग भी दो प्रकार का है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, संग असंग का लक्षण क्या है, इनका भेद समझा कर आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संग दो प्रकार का है, एक समान और दूसरा विशेष। उसका लक्षण सुनो। समान संग यह है कि मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को देता हूं, न मुझे कोई देता है, सब ईश्वर की आज्ञा है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है, और जिससे लेना होता है उससे लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान तप आदि करता है वह ईश्वर अर्पण करता है और अपना अभिमान कुछ नहीं करता, कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निराभिमान होकर वह धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरता है। जो कुछ इंद्रियों के भोग की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महा आपदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है, और जितने पदार्थ है वह सन्निपात रूप है, विचार से नष्ट हो जाते हैं, इससे सबको वह नाश रूप ही जानता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 15। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह युवावस्था बड़ी दुष्ट है। बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी मलिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी वर्षा काल में मलिन हो जाती है, वैसे ही युवावस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवावस्था रूपी बेली प्रकट होती है, सो पुष्ट होती जाती है। जब चित्त रूपी भंवरा उस पर आ बैठता है और तृष्णा रूपी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है, सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रबल पवन चलता है तब सूखे पत्रों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही युवावस्था वैराग्य, संतोष आदि गुणों का अभाव करती है। दुख रूपी कमल का युवावस्था रूपी सूर्य है, इसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित हो आते हैं। इससे सब दुखों का मूल युवावस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, वैसे चित्त रूपी कमल संसार रूपी पंखुरी और सत्यता रूपी सुगंध से खिल जाता है, और तृष्णा रूपी भवरा उस पर आ बैठता है और विषय की सुगंध लेता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी रात्रि है, उसमें युवावस्था रूपी तारांगण प्रकाशते हैं, अर्थात शरीर युवावस्था में सुशोभित होता है। जैसे धान के छोटे वृक्ष हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल नहीं आता, जब फल आता है तब वृक्ष सूखने लगते हैं और अन्न परिपक्व होता है, वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती। वैसे जब तक जवानी नहीं आती तब तक सुंदर शरीर कोमल रहता है, जब जवानी आती है तब शरीर क्रूर हो जाता है और फिर परिपक्व होकर क्षीण और वृद्ध होता है। ऐसे हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के मूल रूप युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। जैसे समुद्र बड़े ताल से तरंगों को पसारता और उछालता है तो भी मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है, और युवावस्था तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा मेट के चलती है और उसको अपना विचार नहीं रहता। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही युवावस्था में शुभाशुभ का विचार नहीं होता। जिसको विचार नहीं रहा उसको शांति कहां से हो, वह सदा व्याधि और ताप से जलता रहता है। जैसे जल के बिना मच्छर को शांति नहीं होती, वैसे विचार के बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जब युवावस्था रूपी रात्रि आती है तब काम पिशाच आके गरजता है और यही संकल्प उठते हैं कि कोई कामी पुरुष आवे तो उसके साथ मैं यही चर्चा करूं कि हे मित्र, वह स्त्री कैसे सुंदर है और उसके कैसे कटाक्ष है, वह किस प्रकार मुझे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इस इच्छा में वह सदा जलता ही रहता है। जैसे मरुस्थल की नदी को देख मृग दौड़ता है और जल की अप्राप्ति से जलता है, वैसे ही कामी पुरुष विषय की वासना से जलता है और शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिसके अभाग्य है उनको विषय से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो और वह उसका निरादर करे, उसका गुण न जानकर डाल दे, वैसे ही जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद नहीं पाया वह बड़ा अभागी है और मूर्खता से अपने जन्म को व्यर्थ खो डालता है। वह युवावस्था में परम दुख का क्षेत्र अपने निमित्त बोता है और मान मोह मद इत्यादि विकारों से पुरुषार्थ का नाश करता है। हे मुनीश्वर, युवावस्था ऐसे बड़े विकारों को प्राप्त कराती है। जैसे नदी वायु से अनेक तरंग पसारती है, वैसे ही युवावस्था चित्त के अनेक कामों को उठाती है। जैसे पक्षी पंख से बहुत उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशु को मारने दौड़ता है, वैसे चित्त युवावस्था से विक्षेप की ओर धावता है। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है, क्योंकि उसमें जल अथाह है अथवा उसका विस्तार भी बड़ा है और उसमें कच्छ मच्छ मगर भी बड़े बड़े जीव रहते हैं, पर मैं उनका तरना भी सुगम मानता हूं, परंतु युवावस्था का तरना महाकठिन है। अर्थात युवावस्था में निर्दोष रहना कठिन है। ऐसी संकट वाली युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते सो पुरुष धन्य है और वंदना करने योग्य है। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख और काटे हो और पवन चलने से सब आप बावली में गिरे, वैसे ही पवन रूपी युवावस्था दोष रूपी धूल और कांटों को चित्त रूपी बावली में डाल के मलिन कर देती है। ऐसे अवगुणों से पूर्ण युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। युवावस्था मुझ पर यही कृपा कर कि तेरा दर्शन ना हो। तेरा आना मैं दुख का कारण मानता हूं। जैसे पुत्र के मरण का संकट पिता नहीं सह सकता और सुख का निमित्त नहीं देखता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का निमित्त नहीं देखता। इससे मुझ पर दया कर कि अपना दर्शन न दे। हे मुनीश्वर, युवावस्था का तरना महाकठिन है। यौवनवान नम्रता संयुक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण वैराग्य विचार संतोष और शांति इनसे भी संपन्न नहीं है। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में वैराग्य विचार शांति और संतोष होना भी बड़ा आश्चर्य है। इसे आप मुझसे वही उपाय कहिए जिससे युवावस्था के दुख से मुक्त होकर मैं आत्मपद की प्राप्ति कर सकूं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस काम विलास के निमित्त पुरुष स्त्री की वांछा करता है, वह स्त्री अस्थि मांस रुधिर मुष्ट मूत्र विष्ठा से पूर्ण है और इन्हीं की पुतली बनी हुई है। जैसे यंत्री की बनी हुई पुतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टा करती है, वैसे यह अस्थि मांस आदि की पुतली में कुछ और नहीं है। जो विचार से नहीं देखता उसको रमणीय दिखती है। जैसे पर्वत के शिखर दूर से सुंदर और गंगमाला सहित भासते हैं और निकट से असार है, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, वैसे ही स्त्री वस्त्र और भूषणों से सुंदर भासती है। जो अंग को भिन्न भिन्न विचार कर देखो तो सार कुछ नहीं। जैसे नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं परंतु उसका स्पर्श करे तो काट के मार डालती है, वैसे जो कोई स्त्री को स्पर्श करते हैं उनको वह नाश कर डालती है। जैसे विष की बेली देखने मात्र सुंदर लगती है परंतु स्पर्श करने से मार डालती है, और जैसे हाथी को जंजीर से बांधे तो जिस द्वार पे रहता है वही स्थिर रहता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान में स्थिर रहता है, वहां से कहीं जा नहीं सकता। जब हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता है तब वह बंधन को तोड़ के निकल जाता है, वैसे ही इस चित्तरूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश का बारंबार प्रहार करते हैं तब निर्बंध होता है। हे मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने नाश के निमित्त करता है। जैसे कदली वन का हाथी कागज की हथिनी देखकर और छल पाके बंधन में आता है और उससे परम दुख पाता है, वैसे ही सब दुखों का मूल स्त्री का संग है। हे मुनीश्वर, जैसे वन के दाह की अग्नि वन को जलाती है, वैसे ही स्त्री रूपी अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि वह अग्नि तो स्पर्श करने से ही जलाती है परंतु स्त्री रूपी अग्नि स्मरण मात्र से जलाती है। जो सुख रमणीय दिखता है वह आपात रमणीय है। जब स्त्री सुख का वियोग होता है तब मुर्दे किनाई हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो अस्थि मांस और रुधिर का पिंजरा है, सो अग्नि में भस्म हो जाएगा अथवा पशु पक्षी के खाने का आहार होगा और प्राण आकाश में लीन हो जाएंगे। इसे इस स्त्री की इच्छा करना मूर्खता है। जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्यामता होती है, वैसे ही स्त्री के शीश के ऊपर श्याम केश है। और जैसे अग्नि के स्पर्श करने से जलता है, वैसे ही स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है। इससे जलना दोनों में तुल्य है। हे मुनीश्वर, युवावस्था को नष्ट करने वाली स्त्री रूपी अग्नि है। जो स्त्री की इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और अज्ञानी हैं। वह स्त्री इच्छा अपने नाश के निमित्त करते हैं, जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही कामी पुरुष अपने नाश के निमित्त स्त्री की इच्छा करता है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी विष की बेली है, हाथ पांव के अग्रभाग उसके पत्र है, भुजा डाली है, स्तन रूप गुच्छे है और नेत्र आदि इंद्रियां फूल है। उस पर कामी पुरुष रूपी भंवरे आ बैठते हैं। काम रूपी धीवर ने स्त्री रूपी जाल बसारा है, उस पर कामी पुरुष रूपी पक्षी आ फंसते हैं। काम रूपी धीवर उसको फंसाकर परम कष्ट देता है। ऐसे दुख को देने वाली स्त्री की जो वांछा करते हैं वे महामूर्ख है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी सर्पिणी है, जब उसका फुत्कार निकलता है तब वैराग्य रूपी कमल जल जाते हैं, और जब सर्पिणी डसती है तब विष चढ़ता है। स्त्री रूपी सर्पिणी का चिंतन करते ही भीतर से आप ही विष चढ़ जाता है। हे मुनीश्वर, जैसे व्याध छल कर मछली को फंसाता है, वैसे ही कामी पुरुष छली के सदृश सुंदर स्त्री रूपी जाल देख के फंसता है और स्नेह रूपी तागे से बंधन पाकर खींचा चला जाता है। तब तृष्णा रूपी छुरी से काम उसे मार डालता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख को देने वाली स्त्री की मुझको इच्छा नहीं। काम रूपी व्याध ने राग रूपी इंद्रियों से जाल बिछा कामी पुरुष रूपी मृगों को आसक्त कर डाला है। स्त्री की स्नेह रूपी डोरी है, उसे कामी पुरुष रूपी बैल बंधा है, और स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कामी पुरुष रूपी कमलिनी खिल जाती है। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यमुखी नहीं होते, वैसे ही कामी पुरुष भोग से प्रसन्न होते हैं और ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे नेवला सर्प को बिल से निकाल करके मारता है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री आत्मानंद में से निकाल करके मार डालती है। पुरुष जब स्त्री के निकट जाता है तब वह उसको भस्म कर डालती है। जैसे सूखे तृण और घृत को अग्नि भस्म कर डालती है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपी नागिनी भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी रात्रि का स्नेह रूपी अंधकार है और काम क्रोध आदि उसमें उल्लू और पिशाच है। हे मुनीश्वर, जो स्त्री रूपी खड़ंग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम से बचा है वह पुरुष धन्य है, उसको मेरा नमस्कार है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसकी अनुसार ही औषध करना होता है, तभी रोग निवृत्त होता है, और कुपथ्य से उसका प्रकोप होकर रोग बढ़ जाता है। इसे मेरे रोग के अनुसार औषध करो। मेरा रोग सुनिए कि जरा और मृत्यु मुझको बड़ा रोग है, उसके नाश की औषधि मुझको दीजिए। स्त्री आदि सब भोग तो रोग के वृद्धि करता है, जैसे अग्नि में घृत डालिए तो बढ़ जाती है, वैसे ही भोग से जरा मृत्यु आदि रोग बढ़ते हैं। इसे इस रोग की निवृत्ति की औषध करो, नहीं तो सबका त्याग कर मैं वन में जा रहूंगा। हे मुनीश्वर, जिसके स्त्री है उसको भोग की इच्छा भी होती है, और जिसको स्त्री नहीं उसको स्त्री की इच्छा भी नहीं। जिसने स्त्री का त्याग किया है उसने संसार का भी त्याग किया है, और वही सुखी है। संसार का बीज स्त्री है, इससे मुझको स्त्री की इच्छा नहीं। मुझको वही औषध दीजिए जिससे जरा मृत्यु आदि रोग की निवृत्ति हो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बालक अवस्था तो महाजड़ और अशक्त है, जब युवावस्था आती है तब बाल्य अवस्था का ग्रास कर लेती है, और उसके अनंतर जब वृद्ध अवस्था आती है तब शरीर जर्जरी भूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जैसे नदी के तट पर के वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जरी भूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर जर्जरी भूत हो जाता है। जैसे पवन से पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर नाश पाता है। जितने कुछ रोग है वह सब वृद्ध अवस्था में आकर प्राप्त होते हैं और शरीर क्रश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्र आदि भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पक्के फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है, और जैसे बावले को देख के सब हंस के बोलते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही है, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं। जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरी भूत हो जाता है, वैसे ही जरा अवस्था में पुरुष जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चीरकाल के बड़े वृक्ष में घुन लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती। हे मुनीश्वर, और भी सब कृत्य क्षीण हो जाते हैं, परंतु एक आसक्तिमान रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उल्लू आ रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आ रहती है और सब शक्तियां क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, जरावस्था दुख का घर है, जब जरावस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं, उससे पुरुष महादीन हो जाता है। युवावस्था में जो काम का बल रहता है सो भी जरा में क्षीण हो जाता है, इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रियां भी निर्बल हो जाती है, केवल एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, जब जरा रूपी रात्रि आती है तब खांसी रूपी स्यार आकर शब्द करते हैं और आधी व्याधि रूपी उल्लू आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच वृद्ध अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है। जैसे फल से वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे में देह कुबड़ी हो जाती है। युवावस्था में स्त्री पुत्र आदि उसकी टहल करते थे, पर वही सब उसको वृद्ध अवस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्यागते हैं, देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं। उसको वह तब ऊंट की नाई भासता है। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं करूं। इस शरीर की तीनों अवस्थाओं में कोई सुखदायी नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था महामूढ़ है, युवावस्था महाविकारवान है और जरावस्था महादुख का कारण है। बाल्यावस्था को युवावस्था ग्रास लेती है, युवावस्था को जरावस्था ग्रास लेती है और जरावस्था को मृत्यु ग्रास लेती है। यह अवस्था सब अल्पकाल की है, इसके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा। इससे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हो जाऊं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।